हरे कृष्ण। तो आज जो है बोर्ड पर दो आचार्यों का तिरुभाव और अविर्भाव है, तो हम लोग एक बार उस पर चर्चा कर लेते, फिर बोर्ड पे लिखे श्लोक पर हम जाएंगे। सबसे पहले बलदेव विद्याभूषण जी, उनके विषय में हम बताएंगे। इनका जो है तिरुभाव दिवस है। श्री बलदेव विद्याभूषण जी जो हैं 1600 ईस्वी में जो है रेमुना उड़ीसा में उनका जो है प्राकट्य हुआ था, जन्म लिया था, और बहुत ही विद्वान थे संस्कृत काव्य इत्यादि में और तर्क शास्त्र इत्यादि में, और बहुत ही सुंदर ढंग से जो है उन्होंने शंकराचार्य और माधवाचार्य जी की जो है शंकराचार्य जी के ग्रंथों को अध्ययन किया, और माधवाचार्य जी से उन्होंने इनिशिएशन अर्थात दीक्षा वे ग्रहण करी। तत्ववादी डिसाइपल सक्सेशन ऑफ श्रीपाद माधवाचार्य उनको कहा जाता है। बलदेव विद्याभूषण जो है बहुत ही दिग्विजय बन चुके थे, प्रगाढ़ पंडित। दिग्विजय का मतलब होता है जो तर्क शास्त्र के द्वारा या शास्त्र संवाद के द्वारा बड़े बड़े लोगों को हरा दे, और जिस भी क्षेत्र में जाए लोग या तो उनका विजय घोषित कर देते थे या हार मान लेते थे। इस प्रकार जो है बड़े बड़े मुनियों को, स्कॉलर्स को, सन्यासी को उन्होंने इस प्रकार हराया था। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु जी से जो है उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और श्री राधा दामोदर गोस्वामी, हाँ, और संवाद के द्वारा बाद चैतन्य महाप्रभु इत्यादि के पढ़ने के बाद ही टुक इनिशिएशन आफ्टर कन्वर्टिंग टू गौड़ीय वैष्णविज्म। पूरे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को पढ़ने के बाद उन्होंने यहाँ इनिशिएशन लिया, और वृंदावन में उन्होंने श्रीमद् भागवतम जो है श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के अंतर्गत सीखा, एंड और उन्होंने राधा श्याम सुंदर जी के जो है विग्रहों की रचना करी। 1706 में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उन्हें भेजा गुलटा था जयपुर राजस्थान में, और वहां पर उन्होंने महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाया। और लेकिन वहां पर जो रामानंदी थे, जो कि श्री वैष्णव की एक ब्रांच है, वो ये क्लेम करते थे बंगाल वैष्णवज हैड नो राइट टू वर्शिप गोविंद जी। वो ये कहते थे कि जो बंगाल के वैष्णव हैं वो लोग गोविंद जी की पूजा नहीं कर सकते, ऐसा क्लेम करते थे वो लोग। और क्यों कहते थे ऐसा? क्योंकि उनके पास, बंगाल के वैष्णवों के पास, वेदांत सूत्र पर भाष्य नहीं था। पहले के समय पे वेदांत सूत्र पे जो लोग भाष्य देते थे उनको बहुत विद्वान या उसी को ऑथराइज माना जाता था, और इसी के चलते रामानंदी संप्रदाय के लोग गोविंद देव जी की पूजा अर्चना करने से मना करते थे इनको, और कहते थे क्योंकि आप लोगों के पास वेदांत सूत्र पर भाष्य नहीं है, इसलिए आप गोविंद देव जी की वर्षित नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, गोविंद देव जी जो राजस्थान में है, रूप गोस्वामी जी के जो विग्रह थे, तो गोविंद देव जी ने स्वयं जो है प्रत्यक्ष रूप से गोविंद भाष्य जो है, जो कि वैष्णव कमेंट्री है वेदांत पर, बलदेव विद्याभूषण जी को क्या किया, रिवील की, प्रकट की। और इसके बाद बलदेव जी ने, बलदेव विद्याभूषण जी ने उसको स्टैब्लिश किया गौड़ीय वैष्णविज्म में, और एक इंडिपेंडेंट फिलॉसफी निकाली इसको वेदांत की। और उसके अलावा उसके बाद वैष्णव, बंगाली वैष्णव को जो दूर रखते गोविंद, उनको फिर से उसमें लगाया गया। गोविंद भाष्य इज द ओनली भक्ति कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र। तो ये गोविंद भाष्य लिखा था बलदेव विद्याभूषण जी ने, ये वैष्णवों का एक वेदांत सूत्र के ऊपर, इसको वेदांत सूत्र कहते थे और गोविंद भाष्य कहलाने लगा, क्योंकि गोविंद देव जी ने इस बारे में लिखा। श्री बलदेव विद्याभूषण एकदम बहुत ही अच्छे निष्कंचन भागवत थे, पूरी तरह से जो है अकिंचन भक्त थे, कुछ मांगते नहीं थे और बहुत ही सिंपल जीवन जीते थे और बहुत ही उच्च भक्त थे भगवान कृष्ण के। और उन्होंने लगभग 24 पुस्तकों की कमेंट्री दी थी और हजारों वैष्णवों को इस कृष्ण भावनामित आंदोलन से जोड़ा, उनको इसका तथ्य समझाया। और छह गोस्वामी की जो है राइटिंग को भी उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से विस्तृत किया और पढ़ा, क्योंकि वो किसी भी तरह के झूठे व्यंकार से दूर थे, मान प्रतिष्ठा से दूर थे। तो उन्होंने किसी भी पोएट्री में, किसी भी काव्य में जो भी उन्होंने लिखा, उसमें अपना स्थान, अपने पिता, अपने पूर्वज, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कहीं नहीं दिया। भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं नवदीप धाम महात्मा में कि जो चैतन्य लीला थी बलदेव विद्याभूषण जी, गोपीनाथ आचार्य उसमें हैं जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में, और गोपीनाथाचार्य द ब्रदर इन लॉ श्री सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य जो ब्रदर थे वो थे। और ब्रज लीला में बलदेव विद्याभूषण जी का जो स्वरूप है, राधा रानी जी की जो है वो मेड सर्वेंट रत्नावली देवी के नाम से सेवा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो आज से 500 वर्ष पूर्व आए थे, जिनके विग्रह आप हमारे मंदिरों में देखते हैं, मंत्र जब से पहले हम उनका जप करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण हैं, नित्यानंद जी बलराम हैं और उनके बाकी सारे पार्षद उनके साथ आए थे इस कलयुग में फिर से युग धर्म की स्थापना करने के लिए और हम जैसी कंडीशन सोल्स को वो कृष्ण प्रेम देने के लिए जो कि अन्य युगों में प्राप्त नहीं होता था। तो जिस प्रकार जब कृष्ण द्वापर युग में अवतरित हुए थे तो अकेले नहीं आए थे, अपने सारे पार्षदों के साथ आए थे, नंद महाराज थे, यशोदा मैया थी, देवकी थी, है ना, बलराम जी थे, सब लोग थे। और फिर लीला की लगभग 125 वर्ष इस धाम में रहे और उसके बाद अपने धाम वापिस चले गए। फिर कलयुग आया तो इस कलयुग में भगवान कृष्ण फिर से राधा कृष्ण का युगल रूप लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने फिर से भक्ति की यहाँ पर स्थापना करी इस युग के लिए। तो फिर वो अकेले नहीं आए, तो अपने साथ बहुत सारे पार्षदों को लेकर आए। तो जितने भी लोग उनकी लीला में पार्षद थे जिनके यहाँ पर नाम आते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य या बलदेव विद्याभूषण, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, जिनके आप हमारे वैष्णव जब दर्शन करते हैं तो उनकी फोटोज देखते हैं, ये लगभग 300-400 साल पहले सब लोग वैष्णव जो आए थे, ये सब चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, अंतरंग पार्षद। और इस पुस्तिका में जो समाधि है और गरुड़ गौर दीपिका में इन सारे जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे इनका असली स्वरूप आध्यात्मिक जगत में भगवान कृष्ण के साथ व्रज लीला में क्या है ये भी बताया गया है ना। तो बलदेव विद्याभूषण जी के बारे में बता रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी की जो मेड सर्वेंट हैं उसमें उनका नाम है क्या, रत्नावली देवी। तो आध्यात्मिक स्वरूप इनका वहां पर वो था और महाप्रभु की लीला में यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण के रूप में आए जिन्होंने गोविंद भाष्य लिखा। उसी तरह दूसरे गंगा माता गोस्वामी जी, तो इनके विषय में भी हम थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। जो बचपन से ही शची देवी जो हैं, किंग नरेश नारायण बंगाल के जो थे, उन्होंने भगवान के प्रति बड़ा ही प्रेम दिखाया और उन्होंने बचपन से ही मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि उनका पूरी तरह जो है प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति था। लेकिन जब उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया अर्थात शरीर त्याग दिया, शी रूल्ड द किंगडम, उन्होंने फिर जो है पूरे का पूरे राज्य का कार्यभार संभाला। लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी उसको छोड़ भी दिया और एक प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त कर ली। जो शची देवी थी वो हरिदास पंडित जी से मिली जो कि एक लीडिंग गुरु थे उसमें वृंदावन के, और उन्होंने जो है भजन गोविंद जी का शुरू कर दिया उनके अंतर्गत। यद्यपि वो जो है ज्यादातर सोती थी यमुना के किनारे और सुबह जल्दी उठ जाती थी सूर्य से उदय से पहले और गोविंद जी के टेम्पल का दर्शन करती थी रोज और वहीं पर भागवत कथा कर सुनती थी और आरती का आरती इत्यादि करती थी, मंदिर के परिक्रमाएं करती थी, राधा श्याम सुंदर जी की है ना लीला स्थानों पर एक एक जगहों पर जाकर दर्शन करती थी। इस प्रकार इन सब लीला स्थलों पर वो जाकर दर्शन किया करती थी। हरिदास ठाकुर जी ने उनको काफी जो है प्रोत्साहित किया शची देवी को कंप्लीट, और पूरी तरह से वो अहंकार रहित हो गई और उसके बाद वो घर घर जाकर जो है अपने लिए रोज की जीविका मांगती थी ब्रज में, और ब्रजवासी भी जो है वो बहुत आश्चर्यचकित होते थे उनकी इस प्रकार की भक्ति निष्ठा को देखकर, क्योंकि राज्य एक बहुत बड़े राज्य से आए थे, सब कुछ त्याग कर वो भक्ति कर रही हैं और घर घर जाकर भिक्षा मांग रही हैं। और उसके बाद अपने गुरु के आदेश अनुसार वो राधा कुंड में गई और जो गोवर्धन के पास है वहाँ श्री लक्ष्मी प्रिया देवी दासी उनके साथ रहने लगी। उसके बाद ठाकुर हरिदास जी ने एक परफेक्ट एग्जाम्पल शो किया लक्ष्मी प्रिया देवी दासी, जो कि लगभग रोज 300,000 नाम लगभग 192 माला किया करती थी है ना, जब उनसे दीक्षा प्राप्त की एवरी डे 2 लेडीज वुड सर्कुल, और ये दोनों मिलकर रोज जो है गोवर्धन की परिक्रमा भी किया करती थी भगवान की पूजा के साथ साथ एक और ले लेती थी, और अपने गुरु के आज्ञा के द्वारा शची देवी बैठ अपने गुरु के आज्ञा के प्राप्त करने के बाद शची देवी जो है सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर गए जगन्नाथपुरी में, और वहां पर जो है सार्वभौम भट्टाचार्य जी क्योंकि भगवान गौरांग महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे उनके साथ रहते थे और उस समय तक वो जो है जब वहां पहुंचे तो वो वापस भगवान की लीला में जा चुके थे, तो इस पर शची देवी जो है उनके घर को फिर से संभालने लगी सार्वभौम भट्टाचार्य को के घर को, और उन्होंने वहां पर जो है भगवान के विग्रहों को स्थापना करी श्यामा राय और उनके सुंदर ढंग से पूजा अर्चना शुरू कर दी जयपुर के ब्राह्मणों के द्वारा। और उसके बाद वो रोज जो है श्रीमद् भागवतम पर कथा करते थे और उनकी कथाएं इतनी सुंदर और आकर्षित होती थी कि दूर दूर से लोग उनको सुनने के लिए आने लगे, और ब्राह्मण क्या किंग मुकुंद देव भी जो है उनसे शची देवी जी क्या किया दीक्षा प्राप्त कर ली उन्होंने, और नवदीप धाम परिक्रमा में श्रीपद नारायण महाराज इत्यादि बताते हैं कि शची देवी जो है गॉट द नेम ऑफ गंगा माता, उनको बाद में जो है गंगा माता के नाम से जाना जाने लगा। गंगा सागर का जो दिन आता है जिस दिन मेला, उस दिन शची देवी जो है वो जगन्नाथपुरी में जाती हैं और गंगा का स्नान करती हैं, और अब उस रात क्या हुआ एक बार दैट नाइट द गंगा फ्लोड फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एंड केम टू शची माता आश्रम। एक बार तो जो है गंगा निकली और उनके आश्रम तक पहुंच गई और गंगा देवी जो है उनका जो पवित्र जल था उसने जो है जगन्नाथ स्वामी मंदिर के अंदर तक एंटर कर गया, और इस प्रकार जो है एक बार दरवाजे को After unlocking the doors, the next morning the pujaris were surprised to find her inside the temple. तो गंगा माता के रूप में जो है वो जब भगवान के चरणों को धोने गई तो पुजारियों ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि ये यहाँ क्या कर रही है, ये तो अंदर कैसे आ गई, और उनको चोर समझकर उन्होंने तुरंत जो है शची माता को जेल में डाल दिया, क्योंकि उनकी इच्छा थी भगवान की सेवा करने की, तो उन्होंने गंगा का रूप लेकर जो है भगवान के चरणों को धोया था इसलिए वो अंदर पाई गई। इस गलती को देखकर भगवान जगन्नाथ जी ने उसी समय जो है अवतार लिया उनके सपनों में आए पुजारी के और राजा के, और उनको बताया कि तुम जल्दी से शची देवी को जो है तुरंत छोड़ दो और इनसे जो है दीक्षा ग्रहण करो। इस प्रकार जो है शशि माता जो है वो गंगा देवी के नाम से, गंगा माता के नाम से जाने लगे। तो ये जो पार्षद थे इनकी लीलाएं समझना बड़ा मुश्किल है, हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि एक लेडी जो है गंगा फॉर्म लेकर भगवान के चरणों को धो रही हैं, इसलिए उनका आज बता रहे हैं। ये सब लोग जो क्योंकि महाप्रभु की लीला में थे तो ये सब वो सारे कार्य कर सकते थे। अगर आज हम बोले कोई इस प्रकार का चमत्कार दिखाओ या कुछ करो, हम तभी मानते हैं, बट ये सब लोग कर सकते थे क्योंकि परम वैष्णव थे। बोर्ड पर जो है हम लोग जो है श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद से चर्चा कर रहे हैं, और इसमें जो है आज सातवां स्कंद का आठवें अध्याय का छठा श्लोक हम लोग लेंगे। बोर्ड पर लिखा हुआ 786 आज का श्लोक, तो उसको हमारे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। कुरुधस्या यस्या कंपन्ते त्रयलोका सह ईश्वर तस्य मे अभीतवत् मूढ़ शासनम किं बल अत्यज्ञा क्रुधस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा तस्य मे भीत वयमूढ़ शासनम किं बलोत्यगा। क्योंकि एक चैप्टर है भगवान नरसिंह द्वारा असुर राज का वध, ये एकदम क्लाइमेक्स पे आ गया सीन, और हम जानते हैं कि इस अध्याय में हम लोग, इससे पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार हिरण्यकश्यपु जो कि खतरनाक तपस्या करके ब्रह्मा जी से उसने अमरता का वरदान प्राप्त किया था, तो अमरता का तो नहीं प्राप्त हुआ था बट उसके समकक्ष प्राप्त हो गया था कि मैं ऐसे ना मरूं, मैं ऐसे ना मरूं, सब कुछ मांग लिया था। और फिर जब किसी के पास शक्ति आ जाती है और उसको ये मिल जाता, पता चल जाता है कि वो ऐसे लोगों से नहीं मरेगा या किसी भी तरह नहीं मरेगा, तो अहंकार जो है चरम सीमा पे पहुंच जाता है। तो हिरण्यकश्यपु जो है जब इतनी शक्तियां उसको प्राप्त हो गई तो उसको भी लगा कि मुझे कोई मार नहीं सकता, और जिनके द्वारा वो शक्तियां दी जा रही हैं वो भी भगवान के ही क्या है पार्षद हैं या उनके कहने पर सेवा करते हैं। तो कई बार ये अहंकार वश जिस प्रकार हिरण्यकश्यपु को लगा कि अब ये शक्तियां मुझे प्राप्त हो गई हैं तो अब मुझे कोई मार नहीं सकता, तो उसका मिसयूज कर अहंकार वश उसने जो है बड़े बड़े देवताओं को भी हराना शुरू कर दिया, सब लोग कांपने लगे उससे। और ये सारी शक्तियां उसने इसलिए प्राप्त की थी ताकि कल को जो मेरे ब्रदर थे, उनका भाई हिरण्याक्ष जो थे जिनको विष्णु ने मारा था वराह अवतार लेकर, उनसे मैं बदला ले सकूं। लेकिन उनके घर में एक संतान भी ऐसी पैदा हो गई थी जिसका नाम था प्रहलाद, और उसको जो है उन्होंने स्कूल में भी भेजा था नीति इत्यादि सीखने के लिए, असुरी गुण सीखने के लिए, ताकि वंश का काम आगे चल सके। लेकिन जब छुट्टियां हुई समर वेकेशन, तो प्रहलाद जी घर आए, उनसे पूछा बताओ सबसे अच्छा चैप्टर क्या लगा आपको, क्या सीखा अच्छा, तो उसने जो है बताना शुरू कर दिया कि भैया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो उनको बड़ा क्रोध आया। क्रोध क्यों आया? एक तो जिसको मुझे मारना है, जिसने मेरे भाई को मारा था हिरण्याक्ष, ये बेटा जो है मेरा असुर का बेटा, ये नाम भी उसी का ले रहा है, उसी का श्रवण कीर्तन की बात कर रहा है। और दूसरा टीचर्स पे आया गुस्सा कि ये पढ़ा क्या रहे हैं इसको, मैंने क्या सीखने के लिए भेजा था, इसको क्या सिखाया जा रहा है कि नहीं। मैंने तो कहा था कि ये इकोनॉमिक्स पढ़े, मैं तो चाहता था ये असुरी विद्या सीखे, मैं तो चाहता था ये राजनीति सीखे, लेकिन ये तो भगवान की बातें कर रहे हैं। तो टीचर्स को कहा भाई तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, इसको ढंग से सिखाओ। तो जिस तरह के आजकल के माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा इस सब्जेक्ट में एक्सेल करे, इसमें आगे बढ़े, इस फिल्म, तो बिल्कुल वही चीज है। लेकिन बच्चा जो है फिर जब दोबारा आता है, पिताजी फिर पूछते हैं अब क्या सीखा, तो वो और शिक्षा देने लगता है कि क्या भाई व्यक्ति को तो जो है हरि के भजन के लिए जंगलों की तरफ जाना चाहिए, है ना, जीवन का जो है कुछ पता नहीं है, और जीवन जो है अंधकूप के समान है। तो अब तो सीमा ना रही उसके क्रोध की, और फिर उसको धक्का दे दिया, सारे रिश्ते खत्म कर दिए उसके साथ। अब तो सबसे बड़ा शत्रु घर में ही आ गया, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में किसी की मजाल ही नहीं थी कि कोई हिरण्यकश्यपु के सामने चूं भी कर जाए। देवता तक लोग जो है डरते थे। अब घर का ही ऐसा निकले तो बहुत दिक्कत हो गई। इतना क्रोध आया कि ठीक है कि जब मुझसे सब डरते हैं और मेरे घर में ही कोई ऐसा आ जाए तो मुझे फिर फिक्र नहीं करनी चाहिए, मैं उसको भी मार दूंगा। तो उसने फिर मरवाने की कोशिश करी और इतना प्रयास किया, जिस भी प्रयास में करते थे सारे विफल हो जाते थे, सबने सुना है। और बाद में पता लगाने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों था, तो सारे उपदेश में पता चलता है कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये सब तो मैंने सीख लिया था कब, जब मैं माता के गर्भ में था। तो ये सारी शिक्षा मुझे जब मैं माता के गर्भ में था और मेरी माता कयाधु को देवता लोग खींच रहे थे, उस समय नारद जी ने बचाया और फिर नारद जी ने अपने आश्रम में ले जाके मेरी माँ कयाधु को ज्ञान दिया। वो ज्ञान सारा मैंने सुन लिया, इसलिए मुझे बचपन से ज्ञान। अब जो है हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित हो चुके हैं। कल तो उन्होंने गालियां भी निकाली काफी, कल के श्लोक में जो चला गया उसमें कहा, अरे उद्दंड निपट दुर्बुद्धि, परिवार को कलंकित करने वाले, अरे नीच, तुमने अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया है, अतः तू हठी है, मूर्ख है, आज मैं तुझे यमराज के घर भेजूंगा। ये पिताजी अपने बेटे से कह रहे क्योंकि बेटा कुछ अच्छी बातें सीखकर आ गया और इतनी सारी गालियां निकाल रहे हैं उसको। पिताजी का काम है ना, असुर राज है वो, और बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि उनका बेटा ऐसा भक्त निकल आएगा। ऐसे केवल देखने को मिलता है हमारे भक्तों के परिवारों में भी, जब कभी बच्चा जो है भक्त बन जाता है या कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और पिताजी का ध्येय था कि नहीं तुझे तो मैं सबसे बड़ा असुर बनाऊंगा, मैं भी असुर हूं तू भी असुर है ना। असुर का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को शरीर मानता है, अज्ञानता में रहता है और इस जीवन को सत्य मानकर यहां पर इस भौतिक प्रकृति का शोषण करना चाहता है भोक्ता बनकर। भगवत गीता के 16वें अध्याय में असुरों की प्रकृति बताई है, तो उसके द्वारा पता चलता है कि असुर कौन है, असुर कैसे होते हैं। तो अगर हम इस दृष्टि से देखें तो पता चलेगा इस समाज में असुर मिलते हैं क्या, इस तरह की क्वालिटी के जैसे हम बता रहे हैं, मिलते हैं, ढूंढने से भी नहीं मिलते नहीं, जबकि उल्टा है इसका कि हम देखते हैं कि पूरा का पूरा समाज अंधकार में है, अज्ञानता में है, और हर व्यक्ति इस समाज में इस प्रकृति का शोषण करना चाहता है, भोक्ता बनना चाहता है, खुद कंट्रोलर बनना चाहता है, और इसी अज्ञानता अहंकार वश वो अपने आप को कर्ता समझता है और सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहता है। चाहता यह व्यक्ति हर कोई है, कुछ लोग सफलता प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोगों को कम सफलता मिलती है, कुछ को ज्यादा मिलती है, लेकिन चाहता हर व्यक्ति है, मेंटालिटी वो डेमोनिक ही है। तो ऐसे परिवार में जिन लोगों का उद्देश्य कुछ नहीं है, ऐसे परिवार में जहां कुछ ज्ञान नहीं है, तो ऐसे सारे लोग इस प्रकार की डेमोनिक नेचर आसुरी भाव में पीएचडी करना चाहते हैं, यू कह सकते हैं, कर्मों में भी। और इस प्रकार पूरा का पूरा समाज असुरों से अगर भरा हो तो असुरों से भरे समाज में शांति हो सकती है, जहां पर हर व्यक्ति भोक्ता बनना चाहता हो या सुप्रीम बनना चाहता हो। आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में यही अंतर है। आध्यात्मिक जगत में कोई लड़ाई नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, ये चीजें नहीं पाई जाती वहां। कारण कि वहां पर सब लोगों को पता है कि हम सब लोग दास हैं। दास का मतलब सेवा करने वाले, और सब लोगों को यह भी पता है कि किसकी करनी है, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, भगवान कृष्ण ही केवल क्या है वहां पर है और हम सब क्या है बाकी उनके दास, सबको पता है। और भगवान की प्रसन्नता ही, भाई अगर कोई नौकर है मालिक को तंग करके सैलरी मिलेगी उसको क्या मिलती है क्या? वो बोले बैंक में जाके 10 लाख रुपए जमा करा दो, वो 10 लाख रुपए उड़ा दे तो मालिक खुश होगा क्या? नहीं। तो आध्यात्मिक जगत में सब लोग जानते हैं कि हम भगवान के दास हैं, हमेशा पता है उनको, और भगवान की योग्यता भी जानते हैं, भगवान की भगवत्ता भी जानते हैं, और भगवान के वो सेवक हैं, उनकी सेवा करते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनके हृदय की इच्छा को पूरा करने के लिए सारे के सारे भक्त, सारे के सारे दास, सबका उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। तो भगवान को प्रसन्न करने में किसी प्रकार का जो है मतभेद ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो आपस में समन्वय करते हुए, कोऑर्डिनेशन करते हुए वो भगवान की सेवा करते हैं। तो ये आध्यात्मिक जगत का कल्चर है। और इसके एकदम उल्टा ये भौतिक जगत है। यहां पर जितने भी होना तो दास चाहिए, लेकिन सारे के सारे क्या बनना चाहते हैं? बॉस बनना चाहते हैं। यहां तो उल्टा है ना, यहां हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भोक्ता बनूं, सब मेरी सेवा करें, सब मुझे पहचाने, मुझे ग्लोरीफाई करें, सब मेरी बातें माने, और किसकी सेवा करें? मेरी सेवा करें। और जो ऐसा नहीं करेगा वो क्या है? मेरा दुश्मन है। और फिर एक बॉस दूसरे बॉस से नफरत करता है, वो बिल्कुल नहीं देखना चाहता कि कोई दूसरा व्यक्ति मुझसे आगे निकल जाए। इसलिए यहां पर ईर्ष्या है, द्वेष है, और सारे के सारे अगर बॉस है तो बड़ा ही मुश्किल है। तो इसलिए इस संसार में इस यहां पर कलह रहते हैं, कलेश रहते हैं। तो यहां पर क्योंकि हर कोई बॉस बनना चाहता है, हर कोई हिरण्यकश्यपु बनना चाहता है, हर कोई इंजॉय करना चाहता है अपनी सेंसेस को, तो इसलिए वो हिरण्यकश्यपु के ही एक्सपेंशन है मेंटालिटी वाइज, है ना, कि इस तरह की मानसिकता रखने वाले सारे वो, इसलिए वो प्रगति करना चाहते हैं, लेकिन किस चीजों में? ऐसी चीजों में प्रगति करना चाहते हैं जो उनकी इंद्रियों को, उनके मन को सुकून दे। आज पूरे विश्व भर में हर देश प्रगति करना चाहता है। कुछ गरीब देश हैं, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकसित होने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ डेवलप कंट्रीज हैं। लेकिन अगर हम इन सारे देशों को देखेंगे तो मानसिकता वही है हिरण्यकश्यपु वाली। जो डेवलप कंट्री है वो दूसरे देशों पर शोषण कर, उनका शोषण करना चाहता है। और ऐसा नहीं कि डेवलप कंट्री का मतलब ये हुआ कि वहां पर जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारियां नहीं है, ये सब है, हर देश में है। तो किस चीज में डेवलपमेंट हुआ? अगर कोई व्यक्ति बोलता है हमारा देश विकसित है, डेवलप कंट्री है, और तुम तो अभी डेवलपिंग स्टेज पे हो, तो उसको थोड़ा नीचा तो दिखा रहा है वो, लेकिन जो डेवलप कंट्री भी है वो किस चीज में अपने को डेवलप बोलता है? वो बोलता है कि मेरे पास आज इंद्रिय तृप्ति के, भोग के, सुरक्षा के सारे साधन हैं। लेकिन भोग के सारे साधन होना, इंद्रिय तृप्ति के सारे साधन होना, मनोरंजन के सारे साधन होना, हर चीज सुरक्षा है, आदमी की सुरक्षा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हम कह सकते हैं कि वो सुखी है, वो आनंदित है? नहीं कह सकते, वो भी नहीं कह सकते। तो जो आसुरी वृत्ति है, जैसे हिरण्यकश्यपु की है, ऐसे लोग जो अज्ञानता में रहते हैं, जो इस जीवन को ही सब कुछ मानते हैं, और अपनी आत्मा की जो नेचर है दास की, वो क्योंकि इस भौतिक जगत में आकर उल्टी हो गई है, बॉस वाली हो गई है, तो यहां पर रहकर हर व्यक्ति डिस्टर्ब है, दुखी है और भगवान बनना चाहता है। कई बार व्यक्ति बोल सकते हैं मैं भगवान नहीं बनना चाहता, ऐसे कैसे बोल रहे, मैं तो कभी नहीं बोला, हम तो आते हाथ जोड़ते। भोग की मेंटेलिटी रखना, दूसरों को कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, हर चीज उसके हिसाब से चलाने का प्रयास करना, ये क्या है? ये भगवान बनने तरह है। इसलिए घर एक छत के अंदर अगर दो लोग भी रहते हैं और दोनों भगवान बनना चाहते हैं, भोक्ता बनना चाहते हैं, दोनों एंजॉय करना चाहते हैं, तो क्या होगा? मतभेद होगा, विवाद होगा, लड़ाई होगी, क्योंकि दोनों ही वो करना चाहते हैं। एक चीज है भोग की, दोनों भोग करना चाहेंगे तो युद्ध होगा। तो इस प्रकार की मेंटालिटी जब तक रहेगी हिरण्यकश्यप की तरह, तब तक सारे सुख होते हुए, सारे साधन होते हुए भी हम परेशान रहेंगे। हिरण्यकश्यप के पास भी कुछ कमी नहीं थी, अगर देवता लोग भी उसके यहां पर आके उसकी सेवा करते थे, उसके प्रकोप से डरते थे, सब कुछ था उसके पास एंजॉय करने के लिए, लेकिन खुद के घर का चिराग वो रिबेलियस हो गया, वो उसने विद्रोह कर दिया, उसने जो है हिरण्यकश्यप के दुश्मन की शरण ग्रहण कर ली। कौन? विष्णु की शरण ग्रहण कर ली। तो बहुत परेशान हुआ, पूरा संसार उसकी बात मानता है, सब लोग उससे थर्राते हैं, कांपते हैं, लेकिन खुद के घर का बच्चा, अपना बच्चा दूसरी पार्टी में जा बैठा, कितना दुख हुआ, कितना परेशान हुआ। तो इसलिए उसने कहा कि ठीक है, ऐसा तो ऐसे संतान चाहिए नहीं मेरे को, मैं तो मार दूंगा उसको। तो हर तरह से प्रयास करा, और अब इस प्रकार की खतरनाक भाषा इस्तेमाल कर रहा है। कल के श्लोक में बताया गया कि गाली का भी मतलब बताया गया कि भक्त के लिए गालियां भी किस प्रकार जो है, इसका मीनिंग जो है वो किस प्रकार रहता है। और आज भी कह रहे हैं वो, अरे दुष्ट पुत्र प्रहलाद, तुम जानते हो कि जब मैं क्रोध तथा गुस्सा हो जाता हूं तो तीनों लोग अपने अपने नायकों सहित कांपने लगते हैं। अगर मैं गुस्सा हो जाऊं तो फिर तुम किसके बल पर इतने दृष्ट हो गए हो कि तुम निर्भीक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो? तो मेरी आज्ञा जिससे तीनों लोग कांपते हैं, तुम्हें कौन से किसने इंजेक्शन लगा दिया कि तुम मेरे भय से डर रहे हो? कितनी अजीब बात है, अपने गुस्से का बता रहे। तो यहां पर अहंकार का बता रहे हैं कि किस प्रकार जब किसी व्यक्ति में अहंकार होता है तो उसको लगता है कि तू समझता नहीं, तू जानता नहीं मुझे, मैं कौन हूं। अहंकार वश। और कह रहे कि तुम्हें किसने शक्ति दी कि तुम इतने निर्भीक हो गए? 5 साल का बच्चा, उसे डर नहीं रहा। किसने दी तुम्हें शक्ति, किस वजह से? तो ये भक्तों का एक बहुत स्वाभाविक गुण हो जाता है। जब भक्त लोग, एक गोविंद दास जी हैं जिन्होंने बड़ा सुंदर भजन लिखा है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। वो कहते हैं मेरे मन तू भजन कर, किसका? गोविंद का भजन कर, क्योंकि वो क्या करते हैं, अभय प्रदान करने वाले हैं। अभय का मतलब फियरलेसनेस। आज हर जीव, हर व्यक्ति इस भौतिक संसार में, चाहे वो भोक्ता बनना चाहता हो, चाहे वो भोगी हो, चाहे वो बड़े ही ऊंचे पद पर क्यों ना हो, और एक छोटी सी चिड़िया भी हो, चाहे चीट भी हो, ऊंचे से ऊंचे पद का व्यक्ति भी क्यों ना हो, हर व्यक्ति भयभीत है अपनी हर पोस्ट पर। हर व्यक्ति संकट में है। एक चींटी भी अगर चिड़िया दाना चुगेगी तो 50 बार लेफ्ट और राइट देखेगी, तब जाके दाना उठाएगी, डर लगा रहता है कि मुझे पकड़ ना ले। हर जीव डर रहा है, मृत्यु का हर किसी को भय है। कोई व्यक्ति कुछ गलत कार्य कर दे तो भयभीत रहता है, कोई किसी के बारे में गलत बोल दे तो भयभीत रहता है, कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, कहां से माल खरीदता है किसी को पता ना चल जाए तो भयभीत रहता है। हर व्यक्ति, हर जगह जिसने भी गलत काम किए हमेशा भयभीत रहेगा। भय जो है सदैव उसके सर पर मंडरात रहता है।
यहां वो कह रहे मेरे मुझसे तीनों लोग कांपते हैं, जबकि तीसरे अध्याय थर्ड कैंटो में 25वें अध्याय में और 42वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मत भयात वातो वाद्ययम, कि मेरे भय से ही ये जो वायु है ना ये चल रही है। भगवान कह रहे हैं वायुदेव अपना काम करते हैं भगवान के भय से। सूर्य दहति मत भयात, जो सूर्य जो आपको प्रकाश दे रहे हैं ना रोज निकलता टाइम पर, है ना, बिल्कुल सही ढंग से चल रहा है, अस्त होना उदय होना, भगवान कह रहे मेरे भय से। भगवान का भय, भगवान के अंग है वो, उनको सेवा किए तुम्हें ये करना है। कह रहे हैं वर्षाति इंद्रो, जो इंद्र महाराज हैं जो ये वर्षा करते हैं, भगवान कह रहे हैं मेरे भय से करते हैं। गोवर्धन लीला में नंद महाराज इंद्र की पूजा कर रहे थे, पूरे गांव वाले इंद्र की पूजा कर रहे थे, भगवान ने कहा क्या जरूरत है। अब भगवान तो डायरेक्ट बोल नहीं सकते थे कि मैं ही भगवान उनके पुत्र के रूप में, उन्होंने क्या जरूरत है इस व्यक्ति, भैया ये इसकी तो पूजा करो ना करो वर्षा तो फिर भी होनी है। आप पूजा करते हो, आप कहते हो यहां वर्षा करता है, मैं कहता हूं नदी ने कौन सी पूजा करी, समुद्र ने कौन सी पूजा करी, बरसात का पानी तो उधर भी गिरता है, इसका काम है। आप छोड़ो ये पूजा करनी तो गोवर्धन की करो ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। और फिर इंद्र को लगा यार मेरी पूजा नहीं हो रही, क्रोध दिखाया और वर्षा कर दी, पूरे का पूरे वृंदावन को डुबाने की कोशिश करी। भगवान ने कहा अच्छा, जब किसी देवता को या असुर को थोड़ा सा भी अहंकार हो जाता है कि मेरी तो ये सेवा है मैं ये कर दिखाऊंगा, तो भगवान को उनका अहंकार कम करना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने काम भी उनसे लेने। भैया प्रकृति में जो लोग जितने पुण्य कर इच्छाओं के साथ आएंगे, बहुत ज्यादा पुण्य कर रहे हैं उनको वो पोस्ट मिलता है कि नहीं, अब उनसे काम भी लेने और उनके अहंकार को भी ठीक करना है। तो भगवान इस प्रकार की लीला कर उन्होंने क्या किया, बादलों से वर्षा करवाई और ऐसे बादल इस्तेमाल किए जो प्रलय के समय काम आते, पूरे वृंदावन को डुबोने के लिए भगवान ने गोवर्धन उठा दिया, 7 दिन 7 रातों के लिए पर्वत को उठा के रखा। इंद्र ने कहा भाई ये तो मेरे पिताजी है ना, माफी मांगी आके उनसे। तो इस प्रकार देवताओं को भी कई बार जो है अहंकार हो जाता अपनी पोस्ट का, तो ये तो असुर है, ये तो बने अहंकार करने के लिए, इसकी क्या गलती है ना जी, अहंकार पर्सोनिफाइड। वो कह रहे मेरे भय से कहा था, भगवान कह रहे नहीं नहीं ये मेरे भय से होता है सब कुछ। तो भय जो है हर व्यक्ति को, हर जीवात्मा को भय है। हिरण्यकश्यप कह रहे हैं कि तेरे अंदर 5 साल का बच्चा छोटा सा मेरे भय से कांप नहीं रहा, इसलिए मेरे बारे में सुने नहीं क्या, हो सकता है इसने मेरा प्रेम देखा हो, लेकिन मैंने मरवाने की भी तो कोशिश करी, मेरा अपना खून था भाई, पहाड़ से फेंकवाया, हाथी के पैरों के नीचे भी दबवाया, कढ़ाई में भी डाला इसको। एक बार सुना था कि अर्जुन को भी थोड़ा सा अहंकार हो गया था कि मैं बड़ा अच्छा भक्त हूं भगवान का, तो भगवान ने कहा अच्छा चलो, तो एक ब्राह्मण के पास ले गए भगवान, वो ब्राह्मण ने बड़ी लंबी तलवार टांगी हुई थी। तो अर्जुन ने कहा भाई तलवार क्यों टांगी हुई है, कहते थे 4 लोगों को मारना है, देखते ही मार दूंगा, बदला लेना मैंने। कहते क्यों, कौन कौन है वो, कहते एक तो प्रहलाद को नहीं छोड़ूंगा। कहते क्यों, कहते भाई उसके चक्कर में भगवान को जब उसको कढ़ाई में डाला तो भगवान को कढ़ाई में जाके बचाना पड़ा और खंभे से निकलना पड़ा, बताओ। कहते दूसरा मैं द्रौपदी को ढूंढ रहा हूं, कहते भी उसको क्या हो गया, कहते कुछ नहीं हमारे भगवान खाना खा रहे थे तब याद किया उनको कि दुर्वासा मुनि जी आ गए और तो भगवान को अपने खाना छोड़ के जाना पड़ा। अरे भगवान को तंग करते हैं लोग, किसी एक का और नाम लिया, फिर कहते चौथा अर्जुन ढूंढ रहा हूं अर्जुन का, कहते क्या बात हो गई, कहते उसने मेरे भगवान को साथी बना के रखा, टांग मारता था इधर मुड़ो इधर मुड़ो, कहते मिल तो जाए एक बार ही। और ये सब बोलते बोलते वो बेचारा ब्राह्मण रोने लगा, भाव ऐसा था। तो अर्जुन को लगा वाह क्या सुंदर भाव है, देखिए कि मेरे से बड़े अच्छे भक्त बैठे भाव दिखाने के लिए। तो कहने का क्या मतलब है, जो भय है ये भक्तों के अंदर, भक्तों से भाग जाता है, क्योंकि वो अभय प्रदान करता भगवान के चरणों की शरणागति ग्रहण कर लेते। इस संसार में हर व्यक्ति को भय है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, उसको भी अपने वादे पूरे ना करने का भय है, 5 साल बाद सीट बदलने का भय है, और एक चपरासी को भी अपना भय है कि मेरी नौकरी ना चली जाए, एक बिजनेसमैन को भी भय है कि मेरा माल बिके ना बिके तो क्या होगा, बच्चों को अपने रिजल्ट का भय है, हर व्यक्ति को भय है किसी न किसी चीज का, हर क्षण भय है। लेकिन जो लोग भगवान श्री कृष्ण की अभय प्रदान करता उनके चरणों की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो भगवान को अभय प्रदान कर देते हैं। अर्थात किस प्रकार, वो जानते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो सर्वोपरि है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सब कुछ करने वाले, सभी कारणों के कारण वो है, इसलिए मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। अब भक्तों के साथ तो फिर भी भगवान पनिशमेंट के रूप में यमराज इत्यादि को रखा हुआ है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, भक्त लोग जानते हैं कि भगवान ने जो सृष्टि बनाई है इसमें पापियों के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के उनके प्रति करुणा, कंपैशन, भक्त वत्सलता या पतित पावन, इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तो इसलिए भक्त लोग किसी भी प्रकार का भय नहीं रखते अपने हृदय, और साथ ही साथ वो जानते हैं कि ये जो देह है ये तो नाशवान है, और इस देह के अंदर जो मैं हूं वो अविनाशी हूं, मेरे द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही तो मुझे शरीर मिलता है। जिस प्रकार रोज कपड़े बदलने से कपड़े उतारते हुए किसी को भय लगता है, वो मैं कपड़े उतार रहा हूं, और फिर नए पहनते हुए खुश होते, ऐसा तो नहीं होता, रोज करता है वो, क्योंकि 20 घंटे के लिए करता है इसलिए हमें लगता कुछ नहीं, लेकिन जब ये वाले वस्त्र उतारे जाते हैं, शरीर किसी का छूटता है या कोई हमारा अपना चला जाता है, तब हमें भय लगता है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी अटैचमेंट्स थी, बहुत सारे आसक्तियां थी, ये करना था, वो करना था, ये किया वो किया, तो यहां पर फिर हम भयभीत रहते हैं। हम लोग एक बार बहुत सुंदर प्रवचन सुन रहे थे गौर गोविंद स्वामी महाराज का, उन्होंने त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु पे श्लोक में बोला और कहा कि जो भगवान के भक्त हैं, जिन्हें विश्वास है कि भगवान है, वो भगवान के चरण कमलों को सदैव अपने मस्तक पर रखते हैं, वो निष्किंचन हो जाते हैं, मतलब उन्हें कुछ नहीं चाहिए संसार में, उन्हें मालूम है कि अगर भगवान है तो मेरा पालन करेंगे, रक्षति इति विश्वासो। चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्रीवास जी को पूछा, अरे तुम कुछ काम हम नहीं करते, तुम्हारी इतनी बड़ी फैमिली है, बच्चे, कहते है ना सब कुछ भगवान दे रहे, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, तो लक्ष्मी उनकी वाइफ है, वो सारा ध्यान रखती है। कहते भाई फिर भी कुछ काम दो, कहते कुछ भी नहीं, मैंने तो बोल रखा 3 बार ताली बजाऊंगा, 1 2 3, मेरी जो जरूरतें पूरी होनी चाहिए, अगर नहीं होंगी तो उसी दिन में नदी में जाकर छलांग मार, ऐसा विश्वास भगवान पर। लेकिन ताली बजने से पहले काम हो जाते थे, किसी न किसी के थ्रू होते थे, लेकिन होते थे। उसी तरह जिन भक्तों का भगवान के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, उन लोगों का बाल भी बांका नहीं हो सकता। व्यक्ति कब संकट में आता है, जब उसको लगता नहीं भगवान नहीं है और मेरी इच्छाएं मेरे हिसाब से पूरी नहीं हो रही है, मैं चाहता था ये और भगवान दे रहे हैं ये, तो भगवान को हटाओ बीच में से, फिर ये पूरा करने के लिए अब किसको भगवान बनाऊं, भगवान बदल गए। तो भगवान कहते भैया ये क्या कर रहा है यार, नकली भक्त है क्या, या तो तू मुझे भगवान नहीं मानता, और अगर मानता है तो फिर तुमको ये नहीं मालूम कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। अरे मैं पूरे विश्व का भरण कर रहा हूं भाई, एक चींटी तक का खाना दे रहा हूं, हाथी तक का खाना दे रहा हूं, तेरी दो रोटियां नहीं दूंगा क्या? हम लोग अहंकार और अज्ञानता वश क्या करते हैं, भगवान बदल देते हैं, या भगवान को कम मानते हैं, या फिर हम मानते हैं कि नहीं भगवान एग्जिस्ट करते नहीं, सुनते नहीं, इनको फिर पत्थर मानते हैं। कुरान में हर पेज पे लिखा है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी हर हरकतों पे नजर है। तो वो लोग बड़े सजग रहते हैं, कुछ भी काम करते हैं। हम सेकंड सेशन करते हैं डज गॉड एग्जिस्ट का, उसमें बताते हैं कि भगवान है, बताना पड़ता है, लोग मान भी जाते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं नहीं भगवान नहीं है। भगवान से ज्यादा सीसीटीवी पे कैमरे पे विश्वास है। किसी ने बोला कि आजकल तो शरीफ लोगों को भी चोरी करने में मुश्किल होती है क्योंकि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। एक तो प्रोफेशनल है और एक जो कभी कभार ठीक है कोई नहीं देख रहा तो चलो। तो सीसीटीवी पे तो विश्वास है, अरे देख रहा है यार, इधर नहीं करना कुछ। अरे इतना बड़ा सीसीटीवी अंदर लगा है, परमात्मा शिरोदीक्षा विष्णु हर एक के हृदय में है। हम इन्हें भगवान मान लेते हैं या उधर किसी को भगवान मान लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो भगवान शिरोदीक्षा विष्णु के रूप में हर एक के हृदय में और सब देख रहे हैं। तो मायावादी हुए कि नहीं हुए हम लोग? नहीं मानते भगवान। लेकिन जिन भक्तों का हमने पढ़ा उस श्लोक को एक्सप्लेन करते हुए गुरु गोविंद महाराज कह रहे हैं कि भक्त लोग अकिंचन होते हैं, वो सदैव भगवान के शरण में रहते हैं और पूरा विश्वास होता है उनको कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे करेंगे। जिनका ऐसा विश्वास है भगवान पर, इतना स्ट्रांग विश्वास है, तो निश्चित रूप से भगवान उनकी मदद करेंगे किसी भी परिस्थिति में। इसलिए भगवान के भक्त निर्भीक होते हैं, वो डरते नहीं है किसी से, किसी से मतलब किसी भी परिस्थिति में नहीं डरते। हिरण्यकश्यप को कह रहा है मैं तीनों लोक हांकते कांपते मेरे से, और तू 5 साल का छोटा सा बच्चा मेरे से डर नहीं रहा, कौन है भाई तेरे पीछे, किसने इंजेक्शन लगाया? अभी आगे बताएंगे। कहेंगे जो मुझे शक्ति दे रहे ना उनकी शक्ति से तुम खड़े हुए हो, तुम्हारी भी शक्ति उसी से है। तुम सोच रहे मैंने ये कर दिया वो कर दिया, अरे ये सब करने के लिए भी भगवान की शक्ति चाहिए। 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नहीं सॉरी 13-14 श्लोक है, बता रहे कि कोई भी कर्म करने के लिए 5 कारण होने चाहिए। 5 कारण करते स्थान, कर्ता, चेष्टाएं है ना, इच्छाएं और परमात्मा, आत्मा करता होगा ना, तो ये 5 चीजों की आवश्यकता है कुछ भी करने के लिए। अगर परमात्मा से सैंक्शन नहीं है तो नहीं होगा वो काम। आज हिरण्यकश्यप इतना बलशाली इतना महान बना है, तो रॉ मटेरियल में तो भगवान भी आते हैं, उस कर्म को पूरा करने में स्थान, प्रकृति, चेष्टाएं, आत्मा, परमात्मा, ये सब कहां से आया भाई? ये मटेरियल किसका है? किसी लेबोरेटरी में 2 तरह के केमिकल मिलाकर कुछ निकाला था क्या? नहीं, ये सब भगवान के द्वारा प्रदत्त है। इसलिए अगर हम कुछ कर भी दिखा देते हैं, कुछ हो भी जाता है, तो ये प्रकृति के गुण है जो हम लोगों को कहीं ऊपर करती है कभी नीचे करती है। राजा रघुगण पालकी में बैठे थे और पालकी खींच रहे थे, पालकी वाहक जड़ भरत को पकड़ लिया, भाई तू भी आ जा, अच्छा हट्टा कट्टा लग रहा तू भी खींच। वो बेचारा जड़ भरत जी महाराज चींटियों को देखकर चलते थे कहीं मेरे से मर ना जाए, ऊपर से उसकी पालकी हिलती थी, भैया चल कैसे नहीं रहा ठीक। कहते कई दिन से तुमने कुछ खाया, मजाक उड़ाया, इतना हट्टा कट्टा था, कुछ खाया नहीं, बीमार लगते हो, बूढ़े लगते हो। उन्होंने एक ही सेंटेंस बोला, कहते तुम मुझे देह से शरीर से पहचानने की कोशिश कर रहे हो, ये मिट्टी का ढेर है, एक मिट्टी का ढेर नीचे है, एक मिट्टी का ढेर पालकी पे है, तो मिट्टी का ढेर अपने कर्मों के हिसाब से ये मिट्टी की ढेरी थोड़ी सी ऊपर बैठी है, थोड़ी नीचे है, और है क्या ये सब? वो कहता बाप रे बाप, इतना खतरनाक ज्ञान, कहते भी ये कोई बड़ी आत्मा है, उतर के नीचे प्रणाम किया, कौन हो महाराज बताओ? सेल्फ रियलाइज, मालूम है आत्मा के स्तर पर बात होती है, ये सब मिट्टी की ढेरियां ही बैठी है ऐसे करके ना, लेकिन मिट्टी की ढेरी बोल के लात नहीं मार सकते इसको, क्योंकि हमें इससे अधिक ज्ञान होना चाहिए कि ये आत्माएं तो हैं, शरीर प्राप्त है, लेकिन इन शरीरों के द्वारा वो भगवान के भक्त बन रहे हैं, वैष्णव हैं, और अगर हम कुछ ऐसा किसी वैष्णव से व्यवहार करेंगे तो वो वैष्णव अपराध काउंट होगा, है ना? तो इस प्रकार वैष्णव लोग वैष्णव सदाचार का पालन करते हुए इस ज्ञान का सदैव ज्ञान को याद रखते हैं कि किस प्रकार इस संसार में हमें व्यवहार करना है। तो इस प्रकार ये हिरण्यकश्यप की जो चिंता है कि इसको कौन ज्ञान दे रहा है, ये कहां से इतना निर्भीक हो गया, कौन है जो इसको अभय प्रदान कर रहा है, तो सबके कारण कौन है? भगवान कृष्ण। और जिस प्रकार छोटा सा बच्चा 5 साल का इतने कष्ट दिए गए उसको, यहां से फेंका वहां से फेंका, बट उसने अपना बिजनेस बंद नहीं किया, अपना विश्वास कम नहीं किया, जब पहाड़ से फेंका तो उसने ये नहीं देखा कि कहां गिरूंगा, चोट लगी, कुछ नहीं, वो सदैव भगवान का स्मरण कर रहे थे। तो जो भक्त लोग सदैव अपने मुख्य बिजनेस में लगे रहते हैं कि हमारा तो काम है भगवान की भक्ति, हमारा तो काम है भगवान का स्मरण कीर्तन, तो विपदाएं भगवान अपने हाथों में ले लेते हैं। हरिदास ठाकुर जी मुसलमान परिवार में पैदा होने के बाद भी भगवान के पवित्र नामों का जप करते थे, जब मुस्लिमों को पता चला तो उसको मरवाने के लिए 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा जा रहा था, लेकिन वो ये कह रहे थे भगवान इनको छोड़ देना, बेचारे इनको पता नहीं क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों मार रहे हैं मुझे, इनको पता नहीं, माफ कर दे रहे। भगवान ने सुदर्शन चक्र भेज दिया था उन सबकी गर्दन काटने के लिए, लेकिन क्योंकि हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे थे कि इनको कुछ ना हो, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट उनको टांगा जा रहा था, मारा जा रहा था, कील ठोकी जा रही थी हाथ में, लेकिन वो क्या कह रहे थे? भगवान इनको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दो। भगवान तो तुरंत खत्म करते हैं ऐसे लोगों को, लेकिन भक्तों का हृदय इतना जो है वो होता है, क्या कहते हैं उसे, कोमल होता है, कंपैशनेट होता है, कि वो किसी का बुरा, किसी बुरे का भी बुरा नहीं चाहते, वो तो ये चाहते हैं कि बुरा भी क्या हो जाए, सही हो जाए। तो हरिदास ठाकुर जी के लिए तो बचाने के लिए तो सुदर्शन चक्र भी छोड़ दिया था, लेकिन क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं चल रही थी साथ साथ, तो भगवान ने कहा मैं क्या करूं, इनको मार नहीं सकता क्योंकि ये मेरा भक्ति बोल रहा मत मारो, और ये मारी जा रहे हैं एंटर, मेरे भक्त को दर्द हो रहा है। तो भगवान ने क्या किया, काम करता हूं, इनविजिबल रूप में भगवान ने हरिदास ठाकुर जी को पढ़ा गए, तो जो हंटर पढ़ रहे थे फिर किसको पढ़ रहे थे, भगवान को पढ़ रहे थे, और भगवान ने वो सब निशान दिखाए हरिदास ठाकुर को अपनी पीठ पर, कि उस समय जब महाप्रकाश लीला में दिखाया कि जब तुम्हें हंटर से मारा जा रहा था और तुम उनकी रक्षा कर रहे थे, उनकी रक्षा के लिए बोल रहे थे, तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, बट मैं ये कर पाया कि मैं तुम्हारे ऊपर आ गया और सारे कोड़े मैंने अपने पीठ पर खाए, ये देखो सारे निशान। तो हरिदास ठाकुर जी देखकर गिर गए कि मेरी वजह से भगवान को कष्ट हुआ। प्रहलाद महाराज कहां से नहीं फेंका गया, हाथी के पैर के नीचे कढ़ाई में डाला गया, होलिका लेकर बैठ गई, बट वो क्योंकि भगवान के भक्त थे, सदैव भगवान पर फोकस थे, तो भगवान ने उनकी रक्षा की हर जगह। तो इस प्रकार का अगर फेथ होगा, इस प्रकार का विश्वास हमारा भी भगवान के प्रति होगा, तो दुनिया की कोई ताकत हमें डरा नहीं सकती, अगर इस प्रकार का विश्वास हो, क्योंकि हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी हर समय रक्षा करें, अपना कर्तव्य करें, अपने नियत कर्म करें और भगवान पर समर्पित रहे। ये हमें प्रहलाद महाराज इस श्लोक के द्वारा समझा रहे हैं। क्षमा करना, हमने प्रपट नहीं पढ़ा प्रभुपाद जी का। प्रपट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मध्य अत्यंत मधुर संबंध होता है। भक्त कभी भी अपने को शक्तिशाली नहीं मानता, उल्टे उसे इतना दृढ़ विश्वास रहता है कि समस्त संकटों से कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, अतएव वह कृष्ण के चरण कमलों पर पूरी तरह समर्पित हो जाता है। भगवान कृष्ण स्वयं भगवत गीता 9:31 में कहते हैं, कौन्तेया प्रतिजान ही ना मे भक्त प्रणशति, हे कुंती पुत्र तुम निर्भीक होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। खुद भी बोल सकते थे लेकिन अपने भक्त से बुलवा रहे, क्योंकि भक्तों की बात तो फिर भगवान को रखनी पड़ती है, खुद बोलेंगे तो कुछ कई बार भगवान को समय काल परिस्थिति के हिसाब से अपनी ही बात को ऊपर नीचे करना पड़ता है। लेकिन भक्त अगर बोल देगा तो क्या करना पड़ेगा, भगवान को करना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप बोल रहे हैं कि कौन तुझे दे रहा शक्ति, क्या इस खंभे में भी है क्या, वो हर जगह व्याप्त है, कहते हैं हाँ इस खंभे में भी है। अब भक्त ने बोल दिया इस खंभे में है तो उस खंभे से निकलना पड़ा भगवान को। हिरण्यकश्यप कहते हैं दरवाजे में, दरवाजे से निकलना पड़ता, जहां पर प्रहलाद महाराज बोलते वहां से निकलना पड़ता, क्योंकि भक्त भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्तों के अधीन रहता हूं, भक्तों के अधीन। कई बार साधक मिसअंडरस्टैंड करते हैं इस बात को, उनको लगता है हम भी भक्त हैं, उस शुद्ध भक्ति के स्तर पर हम भी, हमारी भक्ति क्यों नहीं मान रहे भगवान, ये जैसे प्रहलाद के साथ में मेरे साथ हो रहा है तो मैं जैसे चाहता हूं तो भगवान क्यों नहीं निकलते खंभे से। हम भी कहीं घर में जाके बोले जब बीवी डांटे तुम्हारा महाराज बताते इतना लेट आए तो आपको यो नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान यहां से निकल के जरा इसको संभाल लो है ना। तो हमारा फेथ हमारा विश्वास उतना नहीं है, इतनी देर में बेलन आएगा ठा करके लगेगा और आप बचा लिए जाओगे डॉक्टर के द्वारा। तो कहने का मतलब है कि हमारा विश्वास उस स्तर का होना चाहिए है ना, और बढ़ना चाहिए विश्वास। और भगवान पर विश्वास तब पड़ेगा जब जिन भक्तों का विश्वास भगवान पर दृढ़ है ऐसे भक्तों का संग करें, भगवान की सुंदर लीलाओं का श्रवण करें जिसमें पता चलता है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति किस प्रकार भक्त वत्सलता के कारण उनकी रक्षा करते हैं, इस प्रकार हमारा विश्वास बढ़ेगा। हरि नाम नियमित रूप से लेने से हमारा विश्वास भगवान पर और अधिक बढ़ेगा। तो भगवान कह रहे कुंती पुत्र तुम बोलो कि मेरे भक्त कभी नाश नहीं होता। भगवान ने स्वयं यह घोषणा ना करके अर्जुन से घोषित करने का अनुरोध किया, क्योंकि कभी कभी कृष्ण अपना विचार बदल देते हैं अतएव लोग उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे। इस तरह कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह यह घोषित करे कि भक्त मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हिरण्यकश्यप हैरान था कि 5 साल का बालक इतना निर्भीक कैसे है कि वह अपने इतने महान तथा शक्तिशाली पिता के आदेश की परवाह ना करें। भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी का आदेश पालन नहीं कर सकता, ऐसे है भक्त की स्थिति। हिरण्यकश्यप को समझ गया कि यह बालक हो न हो अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि वह उनके आदेशों की परवाह नहीं कर रहा। अतः हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से पूछा किम बलम, कि तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन कैसे किया, तुमने किसके बल पर ऐसा किया, किसका बल प्राप्त है तुम्हें। तो भगवान कृष्ण का बल प्राप्त था, इसलिए प्रहलाद महाराज इस पूरे प्रसंग में जो है निर्भीक दिखे, ठीक है ना। तो यहां पर हम कथा को विराम देते हैं। ग्रंथ राष्ट्रीय भागवतम की आपका किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो पूछे, सवाल हो गए अलग से आके पूछ सकते हैं, टाइम कम है। हरे कृष्ण।